जरा सोचिए, एक इंसान की कीमत आखिर क्या हो सकती है? मतलब अगर हम इतिहास की सबसे मशहूर कहानी को देखें, तो एक तरफ कोई किसी के सम्मान में अपनी सबसे बेशकीमती खानदानी दौलत एकदम पानी की तरह बहा देता है।
हाँ बिल्कुल, और वहीं दूसरी तरफ कोई उसी इंसान को महज एक गुलाम की कीमत में बेच देता है, मतलब सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में।
सही बात है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर क्रेग कीनर के मैथ्यू अध्याय 26 और 27 पर दिए गए लेक्चर नोट्स और कुछ बहुत ही शानदार ऐतिहासिक शोध पर बात करेंगे।
और मैं बता दूं कि ये कोई आम चर्चा नहीं होने वाली है।
बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक जानी मानी कहानी को फिर से दोहराना नहीं है। हम असल में पहली सदी के रोमन और यहूदी समाज की उस पूरी राजनीतिक और सांस्कृतिक भूल भुलैया को समझने वाले हैं।
हाँ, क्योंकि जिसने ईसा मसीह के अंतिम दिनों की पटकथा लिखी, वो सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, उसमें राजनीति, सत्ता का डर और रोमन साम्राज्य की क्रूरता सब शामिल था।
सुनने वालों के लिए ये सफर बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि देखिए, इतिहास की ये छोटी छोटी परतें जब हटती हैं ना, तो पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
एकदम सही कहा आपने। जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं, तो समझ आता है कि जो घटनाएं आज हमें बहुत साधारण या सिर्फ आध्यात्मिक लगती हैं, वो उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी बगावत थी।
ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं और शुरुआत उसी बात से करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ईसा मसीह का मूल्य।
वो इत्र वाली घटना है ना?
हाँ। स्रोतों में एक अनाम महिला का जिक्र आता है जो उनके ऊपर एक बहुत ही बेशकीमती इत्र उंडेल लेती है। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये ऐसा है जैसे कोई अपनी पीढ़ियों पुरानी सबसे कीमती पुश्तैनी चीज तोड़ दे।
कोई बहुत बड़ा हीरा या ऐसा ही कुछ।
बिल्कुल, कोई ऐसा हीरा जो खानदान की आखिरी पूंजी हो और उसे किसी के सम्मान में तोड़ दिया जाए। ये कोई भावुकता में उठाया गया छोटा कदम नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक ग्रंथों में इस इत्र को नार्ड कहा गया है और ये कोई साधारण परफ्यूम नहीं था।
अच्छा, तो ये नार्ड कहाँ से आता था?
यह संभवतः भारत के हिमालयी क्षेत्रों से आयात किया जाता था। आप खुद सोचिए, पहली सदी में हिमालय से लेकर मध्य पूर्व तक इसे लाना कितना मुश्किल रहा होगा, हजारों मील का सफर।
बाप रे, मतलब उस जमाने में इसकी कीमत तो आसमान छूती होगी।
बिल्कुल, परिवारों में इसे एक अनमोल धरोहर की तरह पीढ़ियों तक सहेज कर रखा जाता था ताकि किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट में ये काम आ सके।
और उसने वो सब एक बार में उंडेल दिया।
हाँ, और जिस एलाबास्टर शीशी में ये था ना, उसकी बनावट ही ऐसी होती थी कि इत्र निकालने के लिए उसकी गर्दन को तोड़ना ही पड़ता था।
ओहो, मतलब थोड़ा सा इस्तेमाल करके बाकी बचाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, सब कुछ एक ही बार में खत्म।
सही पकड़ा आपने, सब कुछ न्योछावर कर दिया गया। और यहाँ एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक तुलना भी देखने को मिलती है। मशहूर रोमन कवि ओविड के बारे में सुना है आपने?
हाँ, नाम तो सुना है, साहित्य के लोग अक्सर बात करते हैं।
तो ओविड ने एक बार बहुत घमंड में लिखा था कि उसकी किताबें और उसका साहित्य उसे अमर कर देगा। वो मानता था कि जब तक रोम रहेगा, उसका नाम गूंजता रहेगा।
लेकिन अगर सच कहूं तो आज साहित्य के कुछ जानकारों को छोड़ दें तो आम लोगों के लिए ओविड का नाम लगभग गुमनाम ही है।
यही तो इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। ईशा मसीह ने उस वक्त कहा था कि जहां भी ये सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस महिला का जिक्र जरूर होगा।
अरे वाह, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई?
हाँ, ओविड के उस घमंड भरे दावे के सामने उस अनाम महिला के समर्पण को आज दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जानती है। बिना किसी किताब या राजनीतिक सत्ता के सिर्फ एक त्याग ने उसे अमर कर दिया।
लेकिन यार, यहाँ एक बात जो मुझे खटकती है वो है शिष्यों की प्रतिक्रिया। जब वो महिला ये सब कर रही थी तो शिष्य ऐतराज जता रहे थे कि इस इत्र को बेचकर गरीबों में पैसा बांटा जा सकता था।
सतह पर देखें तो उनका तर्क बहुत व्यवहारिक लगता है।
हाँ, मतलब लॉजिकल लगता है। और फिर यहूदा आता है जो ईसा मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देता है।
एक तरफ वो महिला है जिसने कोई हिसाब नहीं लगाया और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो एक एक पाई का हिसाब लगा रहे हैं।
देखिए, शिष्यों का तर्क तकनीकी रूप से गलत नहीं था।
जी,
यहूदी परंपरा में दान देना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था।
तो फिर दिक्कत कहाँ थी?
दिक्कत ये थी कि वो समय और परिस्थिति की नजाकत को समझने में पूरी तरह से चूक गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके सामने जो घट रहा है वो कोई आम दिन की घटना नहीं है।
और यहूदा का वो 30 चांदी के सिक्कों वाला सौदा,
हाँ, वो भी कोई संयोग से तय की गई रकम नहीं थी। एक्सोडस यानी मूसा के समय की जो किताब है उसमें 30 चांदी के सिक्के एक गुलाम की कीमत तय की गई है।
अच्छा, मतलब एक इंसान की सबसे कम कीमत।
बिल्कुल, अगर किसी के बैल ने किसी गुलाम को मार दिया तो उसे 30 सिक्के हर्जाना देना होता था। यहूदा ने जान बूझ कर यही कीमत स्वीकार की, ये महज पैसों का लालच नहीं था।
तो फिर क्या था? ये ईसा मसीह की अहमियत को सबसे निचले स्तर पर गिराने का एक प्रतीक था। वो उन्हें एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा था।
दिमाग हिल जाता है ये सोचकर, किसी इंसान की कीमत को लेकर ये जो सामाजिक बंटवारा था, ये सीधे उस आखिरी भोजन यानी लास्ट सपर की तरफ ले जाता है।
हाँ, लास्ट सपर का ऐतिहासिक पहलू बहुत ही दिलचस्प है।
रुकिए, तो क्या वे सब एक ही कतार में कुर्सी पर नहीं बैठे थे? मतलब जब भी लास्ट सफर का जिक्र आता है तो दिमाग में लियोनार्डो दा विंची की वो मशहूर पेंटिंग आ जाती है जहां सब एक लंबी सी टेबल के एक तरफ कुर्सियों पर बैठे हैं।
यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि दा विंची की पेंटिंग कला का बेहतरीन नमूना तो हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वो पूरी तरह भ्रामक है।
सच में? तो फिर वो लोग खाना कैसे खा रहे थे?
पहली सदी में, खासकर रोमन संस्कृति वाले इलाकों में, लोग दावतों में कुर्सियों पर नहीं बैठते थे। उस समय ट्राइक्लिनियम डाइनिंग स्टाइल का चलन था।
ट्राइक्लिनियम, ये क्या होता है?
ये एक यू आकार की व्यवस्था होती थी।
मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, जहां लोग लेट कर खाते थे। लेकिन यार, ये हमेशा अजीब लगता है कि कोई दावत में लेट कर कैसे खा सकता है। ये तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है।
आज हमें अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय ये रईसी और आजादी का प्रतीक था। मैं बताती हूँ कैसे। लोग सोफे जैसी जगह पे अपनी बाई कोहनी के बल लेटते थे।
अच्छा, बाई कोहनी पर वजन डालकर रिक्लाइन करते थे।
बिल्कुल, ताकि उनका दाहिना हाथ खाना खाने और शराब का प्याला उठाने के लिए पूरी तरह आजाद रहे, और उनके पैर टेबल से दूर बाहर की तरफ होते थे।
ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है। इसी वजह से वो घटना संभव हो पाई जहां जॉन ईसा मसीह की छाती पर सिर रख सका।
एकदम सही। अगर वे कुर्सियों पर बैठे होते तो ऐसा करना बहुत अजीब और लगभग नामुमकिन होता।
हाँ, वो तो है।
और ट्राइक्लिनियम की इसी बनावट की वजह से लूका के सुसमाचार में एक महिला पीछे से आकर उनके पैर धो पाती है।
क्योंकि पैर तो टेबल से दूर बाहर की तरफ लटक रहे थे।
हाँ, तो खाने में कोई बाधा भी नहीं पड़ी।
ये विजुअल तो पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और इस भोजन के दौरान जो बातें हुई उनका भी तो एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है ना, जैसे वो रोटी वाली बात।
हाँ, फसा के भोजन के दौरान घर का मुखिया रोटी उठाकर पारंपरिक रूप से कहता था कि ये वो रोटी है जो हमारे पूर्वजों ने मिस्र की गुलामी से आजाद होते वक्त खाई थी।
तो क्या वो सच में वही पुरानी रोटी होती थी?
अरे नहीं, यहूदी लोग सदियों से इसे ऐसे ही बोलते आ रहे थे। वे जानते थे कि ये वही असली रोटी नहीं है, वरना वो 1300 साल पुरानी और पत्थर जैसी सख्त होती।
जाहिर सी बात है।
ये तो बस अतीत की घटना को वर्तमान में जीने का एक तरीका था, एक प्रतीकात्मक भाषा। ईसा मसीह ने इसी परंपरा को मोड़कर खुद से जोड़ दिया।
लेकिन मैंने पढ़ा है कि बाद में कोरिंथ के चर्च में इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो गया था।
हाँ, समस्या तब शुरू हुई जब ये परंपरा यहूदी दायरे से बाहर निकलकर ग्रीक रोमन दुनिया में पहुंची, क्योंकि रोमनों का दावत को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था।
मतलब उनके लिए दावत का क्या महत्व था?
उनके यहाँ दावत का मतलब समाज में अपना रुतबा और ताकत दिखाना होता था। रोमन समाज पैट्रन क्लाइंट सिस्टम पर चलता था।
पैटर्न क्लाइंट मतलब जो अमीर हैं वो पैटर्न और जो गरीब है वो क्लाइंट।
हाँ, दावतों में अमीर लोग जो मेजबान होते थे वे सबसे अच्छी जगह बैठते थे और उन्हें सबसे बेहतरीन वाइन और खाना परोसा जाता था, और जो गरीब क्लाइंट थे उन्हें दूर बिठाया जाता था और बहुत खराब खाना दिया जाता था।
तो जब कोरिंथ के लोगों ने प्रभु भोज को अपनाया तो क्या उन्होंने भी ऐसा ही किया?
बिल्कुल, वे अपना रोमन चश्मा उतार ही नहीं पाए। उन्होंने इस समानता वाले भोजन को भी अपनी रुतबे वाली दावत में बदल दिया। अमीर लोग पहले आकर अच्छा खाना खा लेते थे और गरीब भूखे रह जाते थे।
बाप रे, मतलब वो इस भोजन के पीछे का मूल विचार ही नहीं समझ पाए कि इसने समाज के सारे ऊंच नीच मिटा दिए थे।
सही कहा। अब रोमन समाज के इस रुतबे और ताकत के भ्रम से निकलकर कहानी गेत्सेमेने के बाग में पहुंचती है।
हाँ, गेत्सेमेने एक तरफ एकदम सन्नाटा, अकेलापन और डर है, और दूसरी तरफ शिष्यों का असली इम्तिहान।
और वहाँ जो होता है वो वाकई हैरान करने वाला है।
बिल्कुल, जब सैनिक आते हैं तो पीटर भावनाओं में बहकर अपनी तलवार निकालकर हमला कर देता है। ये मुझे किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, जहाँ हीरो का दोस्त बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठता है।
हाँ, पीटर की वो प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक थी, लेकिन वो अभी भी ताकत को उसी नजरिए से देख रहा था जैसे रोमन देखते थे, मतलब तलवार और हिंसा।
लेकिन ईसा मसीह ने तो उसे रोक दिया था ना?
हाँ, उन्होंने उसे रोका और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो अपने पिता से देवदूतों की 12 सेनाएं, मतलब 12 लीजन बुला सकते हैं।
ये लीजन वाला शब्द तो रोम की मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होता था ना?
बिल्कुल, पहली सदी के परिप्रेक्ष्य में लीजन शब्द का मतलब रोम की अजय सैन्य ताकत से था। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं था।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रोम की एक लीजन में लगभग 6,000 प्रशिक्षित सैनिक होते थे।
सही कहा, 6,000 पैदल सैनिक और उनके साथ घुड़सवार भी। तो आप खुद हिसाब लगाइए, 12 लीजन का मतलब हुआ 72,000 से ज्यादा देवदूत।
बाप रे, 72,000!
और यहाँ जो सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है वो ये है कि उस समय पूरे जूडिया प्रांत में रोम की एक भी पूरी लीजन तैनात नहीं थी।
अच्छा, तो फिर रोमन सेना कहाँ थी?
रोम की बड़ी सेनाएं सीरिया में तैनात थी। यरूशलम में तो बस कुछ टुकड़ियां ही त्योहारों के समय शांति बनाए रखने के लिए आती थीं।
मतलब ईसा मसीह पीटर को बता रहा था कि उन्हें बचाने के लिए पीटर की उस छोटी सी तलवार की जरूरत नहीं है।
हाँ, वो कह रहे थे कि उनकी पहुंच उस ताकत तक है जो वहां मौजूद रोम की पूरी सैन्य क्षमता से भी कई गुना बड़ी है। लेकिन असली ताकत इस बात में थी कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया।
और उनके इस त्याग के बाद जो होता है यार, वो शिष्यों के लिए बहुत ही शर्मनाक था। वो सब जिन्होंने उनके साथ मरने की कस्में खाई थीं, उन्हें अकेला छोड़कर दुम दबाकर भाग गए।
हाँ, ये बात तो है।
मतलब पब्लिक रिलेशंस या पीआर के नजरिए से देखें तो बहुत अजीब लगता है। अगर आज कोई संस्था अपना इतिहास लिखेगी तो वो कभी अपनी ऐसी बेइज्जती वाली बात नहीं लिखेगी।
इतिहासकार इसी बात को क्राइटेरियन ऑफ एम्बैरेसमेंट कहते हैं।
ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी?
यह इतिहास का एक सिद्धांत है जो कहता है कि अगर किसी दस्तावेज में कोई ऐसी बात लिखी है जो लेखक या उसके नायकों के लिए बेहद शर्मनाक है, तो उसके सच होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
अच्छा, मतलब कोई अपने ही हीरो की बुराई क्यों लिखेगा जब तक कि वो सच ना हो?
बिल्कुल। शुरुआती ईसाई, जिन्हें दुनिया भर में ये संदेश फैलाना था, वे कभी यह मनगढ़ंत कहानी नहीं गढ़ते कि उनका मसीहा गेत्सेमैन में घबराकर पसीना बहा रहा था,
या फिर उनके सबसे खास शिष्य उन्हें छोड़कर भाग गए थे।
हाँ, ये बातें इतनी शर्मिंदगी भरी हैं कि इनका इतिहास में दर्ज होना ही साबित करता है कि ऐसा सच में हुआ था। उन्हें सच्चाई को ज्यों का त्यों लिखना पड़ा।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब ये कहानी व्यक्तिगत धोखे से निकलकर सीधे राजनीतिक और कानूनी शतरंज की बिसात पर आ जाती है।
हाँ, सैनहेड्रिन के सामने उनका मुकदमा।
बिल्कुल, बाग में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें उस समय के सबसे ताकतवर धार्मिक ढांचे सैनहेड्रिन के सामने लाया गया। मैंने कई जगह पढ़ा है कि ये पूरा मुकदमा ही गैर कानूनी था।
किस आधार पर?
यहूदी नियमों की जो किताब है मिशना, उसके अनुसार रात के अंधेरे में मुकदमा करना या त्योहार के दिन अदालत लगाना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था।
देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मिशना के नियम अपनी जगह बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन हमें यहाँ इतिहास की टाइमलाइन को समझना होगा।
टाइमलाइन मतलब?
मिशना के नियम लगभग 220 ईस्वी के आसपास संकलित किए गए थे और वे नियम फरीसियों के आदर्श विचारों पर आधारित थे।
लेकिन उस रात जो लोग ईसा मसीह का मुकदमा कर रहे थे वो तो फरीसी नहीं थे ना, वो सत्ता तो सद्दूकी गुट के हाथ में थी।
बिल्कुल सही, वो अदालत सद्दूकी गुट और महायाजकों द्वारा बुलाई गई थी और पहली सदी के महायाजक बहुत ही भ्रष्ट और ताकतवर माने जाते थे।
मतलब वो इन नियमों को मानते ही नहीं थे।
वे खुद को इन आदर्श नियमों से ऊपर समझते थे। उनके लिए ये मुकदमा न्याय का था ही नहीं, ये बस अपनी सत्ता को बचाने का एक हताश प्रयास था।
और जब झूठे गवाहों की गवाही आपस में नहीं मिली तो महायाजक कायफा ने क्या किया?
कायफा, जो एक बेहद चतुर राजनीतिज्ञ था, उसने सीधे ईसा मसीह से पूछा कि क्या वे मसीहा हैं।
और जब उन्होंने हाँ कहा तो कायफा ने इस धार्मिक दावे को बहुत ही चतुराई से एक राजनीतिक अपराध में बदल दिया, क्योंकि वो जानता था कि रोम को यहूदियों के धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
कायफा की यही चाल सबसे घातक थी। उसने ईसा मसीह के मसीहा होने के दावे को रोमनों के सामने राजद्रोह यानी ट्रीजन के रूप में पेश किया
कि ये आदमी खुद को यहूदियों का राजा कह रहा है।
हाँ, और रोमन साम्राज्य का कानून बहुत कड़ा था। सीजर के अलावा अगर कोई खुद को राजा कहता था तो वो रोम की सत्ता को सीधी चुनौती थी।
अब यहाँ एंट्री होती है पोंटियस पिलातुस की, रोमन गवर्नर। पिलातुस तो बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था ना?
हाँ, वो यहूदियों की भावनाओं को कुचलने के लिए ही जाना जाता था।
लेकिन इस मुकदमे में वो बैकफुट पर क्यों नजर आ रहा था? ऐसा लगना था जैसे वो ईसा मसीह को छोड़ना चाहता था, लेकिन भेड़ के आगे डर गया।
इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है।
मतलब अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये किसी कॉरपोरेट कंपनी के उस मैनेजर की तरह लगता है जो वैसे तो बहुत रुतबा झाड़ता है, लेकिन हाईकमान तक शिकायत पहुंचने के डर से रातों रात अपने फैसले बदल लेता है।
ये तुलना बहुत सटीक है। इसके पीछे रोम की एक बहुत ही गहरी राजनीतिक साजिश काम कर रही थी।
उस समय रोम में सम्राट टाइबेरियस सत्ता से किनारा करके कैप्री द्वीप पर चला गया था।
अच्छा, तो फिर राज कौन कर रहा था?
उसने अपना सारा काम सेजानस नाम के एक बेहद ताकतवर और क्रूर अधिकारी को सौंप रखा था। सेजानस यहूदियों से सख्त नफरत करता था और पिलातुस उसी की कृपा से अपनी कुर्सी पर बैठा था।
तो पिलातुस को अपनी नौकरी जाने का डर था।
हाँ, सेजरेस के पास मुखबिरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, तो पिलातुस को डर था कि अगर उसने यहूदियों के नेताओं की बात नहीं मानी तो वो सीधे रोम में शिकायत कर देंगे
कि पिलातुस सीजर के खिलाफ उठने वाले एक विद्रोही राजा को बचा रहा है।
बिल्कुल, ऐसे आरोप का मतलब था पिलातुस की कुर्सी जाना और शायद उसकी जान भी जाना। इसलिए जब भीड़ ने चिल्लाकर कहा कि अगर तू इसे छोड़ता है तो तू सीजर का दोस्त नहीं है, तो पिलातुस टूट गया।
उसने न्याय और अपनी खुद की जांच सबको ताक पर रख दिया।
हाँ, उसने सिर्फ अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए एक निर्दोष इंसान को क्रूस की सजा सुना दी।
यहाँ कर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। राजनीतिक फायदे के लिए लिए गए इस फैसले का सीधा असर उस भयानक शारीरिक सजा पर पड़ा जो रोमन साम्राज्य का सबसे क्रूर हथियार थी।
क्रूस पर चढ़ाना कोई आम सजा नहीं थी।
हाँ, और सजा से पहले जो सैनिकों ने मजाक उड़ाया वो भी अजीब था। उन्होंने कांटों का ताज पहनाया। मुझे हमेशा लगता था कि वो ताज सिर्फ दर्द देने के लिए था।
दर्द तो था ही, लेकिन इसके पीछे मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक प्रहार और रोम की ताकत का प्रदर्शन था। सैनिक असल में उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक नकली राजा का रूप दे रहे थे।
मतलब वो किसी की नकल कर रहे थे।
हाँ, उस समय के जो हेलेनिस्टिक राजा होते थे वे ऐसे ताज पहनते थे जिनमें किरणें बाहर की तरफ निकली होती थीं, जो खुद को सूर्य देवता के समान दिखाने का प्रतीक था।
ओहो, तो सैनिकों ने उसी की नकल करते हुए कांटों की झाड़ी से एक ताज गूंथा।
बिल्कुल, लेकिन जब आप कांटों से कुछ गूंथते हैं तो कांटे सिर्फ बाहर नहीं रहते, वे अंदर की तरफ भी होते हैं। ये उनके राजसी दावों का एक क्रूर और लहूलुहान कर देने वाला मजाक था।
ये तो कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। और सजा यहीं तक सीमित नहीं थी। जो कोड़े मारे गए वो भी यहूदी सजा के नियमों से बहुत अलग थे ना। मैंने पढ़ा है कि यहूदी कानून में 39 कोड़ों की एक सीमा तय थी।
हाँ, यहूदी कानून में 39 कोड़ों की सीमा थी ताकि इंसान की जान न जाए, लेकिन पिलातुस ने रोमन कानून के तहत कोड़े मारने का आदेश दिया था।
रोमन कोड़े में क्या फर्क था?
रोमन कोड़े, जिसे फ्लैजिलम कहते हैं, उसमें कोड़ों की कोई गिनती या सीमा नहीं होती थी। इसके चमड़े के पट्टों के सिरों पर सीसे की गोलियां, हड्डी के टुकड़े या कांच बंधे होते थे।
बाप रे।
रोमन सैनिक तब तक मारते थे जब तक वे थक ना जाएं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस सजा में इंसान की पीठ का मांस उधड़ जाता था, हड्डियां तक दिखने लगती थीं।
इससे तो शरीर का बहुत सारा खून बह जाता होगा।
हाँ, जिसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। कई बार तो अपराधी क्रूस तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे।
इतनी क्रूर सजा। अक्सर हम जो तस्वीरें देखते हैं उनमें ईसा मसीह पूरा का पूरा क्रॉस उठाकर पहाड़ी की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन ऐतिहासिक शोध तो कुछ और ही बताते हैं।
हाँ, एक पूरा क्रॉस बहुत भारी होता था, लगभग 300 पाउंड का। आमतौर पर खड़ा हुआ लकड़ी का हिस्सा, जिसे पालियस कहते थे, वो सजा की जगह पर पहले से गढ़ा होता था।
अच्छा, तो उन्हें पूरा क्रॉस नहीं उठाना पड़ा था?
नहीं, अपराधी को सिर्फ क्रूस का आड़ा हिस्सा, जिसे पैटिबिलम कहते हैं, वो अपने कंधों पर उठाकर ले जाना होता था। उसका वजन भी लगभग 75 से 100 पाउंड के बीच होता था।
ओम, और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक देखने को मिलती है। ईसा मसीह ने अपनी शिक्षाओं के दौरान शिष्यों से कहा था कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ।
हाँ, लेकिन जब सच में क्रूस उठाने का वक्त आया तो उनके सारे शिष्य वहां से गायब थे।
बिल्कुल, रोमनों को सड़क से गुजर रहे एक अनजान व्यक्ति को पकड़ना पड़ा। साइरीन का शमोन नाम यो ना उसका।
हाँ, शमोन, वो बस वहां से गुजर रहा था और सैनिकों ने उसे जबरदस्ती वो क्रूस उठाने के लिए मजबूर कर दिया।
जिन लोगों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वे दूर कहीं छिपे थे और एक अनजान राहगीर को वो बोझ उठाना पड़ा।
ये उस समय के सामाजिक ताने बाने और मानवीय कमजोरी का बहुत ही सटीक चित्रण है।
सही बात है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा में हमने देखा कि ये सिर्फ एक जानी मानी धार्मिक कहानी नहीं है। जब हम इसके ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हैं तो हमें रोमन साम्राज्य की खौफनाक क्रूरता और नेताओं का अपनी कुर्सी का डर सब नजर आता है।
हाँ, कैसे ट्राइक्लिनियम डाइनिंग के तरीके से लेकर रोमन लीजन की सैन्य ताकत तक इतिहास की ये परतें इस कहानी को एक नई गहराई देती हैं।
ये सब उस दुनिया में हो रहा था जहाँ न्याय से ज्यादा अहमियत सत्ता और रुतबे की थी।
और ये शोध हमें यही सिखाता है कि इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक दबाव में लिए गए फैसले और ताकत का अहंकार आज के समाज से भी बहुत अलग नहीं है।
बिल्कुल। चर्चा का अंत करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरे शोध में एक घटना है जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा।
कौन सी घटना?
निर्दोष खून की भयानक विडंबना। जरा सोचिए, जब यहूदा को पछतावा हुआ तो उसने वो 30 चांदी के सिक्के मंदिर में वापस फेंक दिए, लेकिन धर्मगुरुओं ने क्या किया?
उन्होंने उन सिक्कों को खजाने में रखने से मना कर दिया था।
हाँ, क्योंकि उनके अनुसार वो खून के पैसे थे और अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध थे। वे लोग पैसों की तकनीकी पवित्रता को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने उस पैसे से विदेशियों के लिए कब्रिस्तान खरीद लिया।
पैसों की पवित्रता की फिक्र थी, लेकिन एक निर्दोष इंसान को मौत के घाट उतारने की नैतिक अशुद्धता से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
यही तो बात है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कई बार समाज छोटी छोटी तकनीकी शुद्धता या नियमों में इतना उलझ जाता है कि इंसानियत के सबसे बड़े अन्याय को भी आसानी से अनदेखा कर देता है।
बहुत ही गहरी बात कही आपने।
तो इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।